るために走るために結果されて、あの話を発言、気策で気策で出てきて、それで कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे भजन करते करते उनको कुछ ज्ञान होने लगा। देखा था कि जंगल में आग लग गई, चारों तरफ निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, फिर मरना तो है, अब मैं कहां जाऊं। बस चुपचाप भगवान का नाम स्मरण करके और निश्चेष्ट होकर के बैठते। गंधारी भी कहीं तस्त मस्त नहीं, तुलसी भी वहीं पर रही, और आग आई और उस आग में जल करके खत्म हो गया। किंतु चूंकि अपना चित्त भगवान में लगाया था, आत्मा को तो आग जलाती नहीं, शरीर को जला दिया। वो तो जलना ही था, किसी न किसी तरह से उनके परिवार वाले जलाते, भीम जलाता या कोई, तो वो भगवान थे कृपा से उस जंगल में ही अपने शरीर को छोड़ वहां से भागने की चेष्टा नहीं। उसी प्रकार से ये आग लगी हुई है भाई, ये विश्व में हम उसके अंदर पड़े हुए हैं, इसमें भी निश्चिंत होकर के भगवान का भजन कर। यदि बिलबिलाते रह जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा, इसलिए दुख करने के लिए चेष्टा मत करो या आपको हटा दे। उस समय में वो चाहता तो आग को हटा देता या बुझा देता, इसलिए ये संसार की आग बुझने वाली नहीं है, कभी नहीं बुझेगी, बुझेगी तो भगवान के नाम से ही बुझेगी। इस चीज को समझ रखो, आग लगी हुई ये प्रताप, इसलिए भगवान के भजन से ही ऐसा। यदि साधारण व्यक्ति को भी इतना कष्ट से इतना कठोर तपस्या करना पड़ता है तो जन्मांत से पार होकर के भगवान को प्रेम पाने के लिए हंस करके जीवन गवा देने से ही भगवान मिल जाएंगे, इतना सहज भगवान का मिलना नहीं है। ये जो स्थिति बतलाया है बहुत उन्नत स्थिति है, संसार का तो 70-80-90 वर्ष की उम्र तक भोग को लिया, देखो तो ये संसार क्या है, मिला कुछ सुख, कुछ चीज मिली मृग मरीचिका, मृग मरीचिका किसको कहते हैं, ये कई धूप में मरुभूमि में हिरण प्यासा रहता है, पानी खोजता है, पानी कहीं नहीं मिलता, उसमें में वो देखता है कि यहां तो पानी का समुद्र लहरा रहा है, गर्मी की वजह से हवाएं ऐसे तरंग जैसी होती हैं, और देख करके होता है ये पास में पानी है, दौड़ता है, आगे जाने पर और बालू में धसता चला जाता और वो तरंग और दूर दिखाई देती है, करते 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 कुछ देरों के बाद में प्राण छटपट करता है और वो गिर जाता है गर्म बालू में और एकदम सिद्ध हो जाता है और वहीं पर प्राण को छोड़ देता है। इसलिए समय रहते हुए सचेत होना चाहिए और भगवान के लिए कष्ट से भी आराधना उनकी होनी चाहिए। यदि कष्ट से घबरा करके छोड़ देंगे और दिन रात आराम के साथ मनाने की चेष्टा करेंगे, भाई ऐसे आराधना नहीं, इसलिए गोपियों के कितने विरह के बाद में तर्पण के बाद में उनको दर्शन दिया आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं ताशा महाविभू को सौरी, उन गोपियों को देखा जो विरह से तड़पती हुई हमारे नामों का कीर्तन कर रही है, हमारी महिमा का गान कर रही है, भगवान से रहा नहीं गया, फिर वो यहां पर उपस्थित हो गए। कैसे, यहां पर उनको सौर्य कहा गया, सौर्य माने सूर्यवंश, इसलिए जैसे क्षत्रिय लोग बड़े सहिष्णु होते हैं, कैसे युद्ध में हाथ भी कट जाए, पैर कट जाए, कहीं तलवार लग जाए तो युद्ध से मुख मोड़ेंगे और उत्साह के साथ में लड़ते हैं। बिट्टासुर का वो कट गया ना, क्या हाथ काट दिया, ये हाथ काट दिए, ये सब काट दिया है? तो केवल मुख फाड़ करके उनके तरफ में दौड़, युद्ध से मुख नहीं मोड़ा, और उस समय भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसा होना चाहिए सहिष्णु। तो कहते हैं कि कृष्ण यहाँ पर क्षत्रिय वंश के हैं, सहिष्णु है। तात्पर्य क्या है? ऐसा हो सही है वो महाभारत में ऐसा वर्णन किया। बहुत से लोग युद्ध कर रहे हैं, सिर काट दिया और ऐसे ही वो सिर तो गिर गया और हाथ में तलवार लेकर के दौड़ रहा है, एकदम दौड़ करके गया कुछ देर के बाद में पकड़ लिया। और उसका मुख कैसा ऐसा ऐसा किए थे वो अलग रूम में बन गई थी। ऐसे सब उदाहरण है, उसमें आविष्ट था ना, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो वो कह रहे हैं जो सौरे आप गोप नहीं है, मृदु स्वभाव के कोमल स्वभाव पर एक कठिन स्वभाव के हैं। कौन कह रहा है? नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। उनको थोड़ा सा उन पर रोष हो गया, ये आप ऐसे कठोर हैं जो गोपियों को इतना कष्ट दिया। आप निश्चित में नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोप नंदन नहीं है, आप जरूर क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कैसे होते हैं? एक क्षत्रिय बालक अपने को छिपा करके परशुराम के पास में गया, जनेऊ लगा लिया। किशोर बालक बड़ा देखने में सुंदर, वो कौन था? कर्ण था। कर्ण कितना सुंदर होगा, कुंती का पुत्र है ना, सूर्य का घर से पुत्र, बहुत ही सुंदर तेजस्वी था। वो ब्राह्मण बालक जैसा जनेऊ डाल लिया, उनके पास में गया। क्यों गया? उनको शस्त्र शिक्षा लेनी है, अर्जुन को नीचे दिखाना है, इसलिए वो गया। परशुराम जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी भी क्षत्रिय बालों को शिक्षा नहीं दूंगा, मैं ब्राह्मण बालकों को ही शिक्षा दूंगा। तो उसने देखा कि ये ब्राह्मण तो हूं नहीं, तो शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए छल बहाना करके उसने वो गया और जाकर के कहा उनके चरणों में कि मैं ब्राह्मण बालक हूं और हमको आप धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए, बेटों की शिक्षा दीजिए। सचमुच में है तो ब्राह्मण का लड़का है तो ऐसा है, और कुछ गोत्र पूछा तो उसने गोत्र बदला दिए झूठ मूठ का, माता पिता का नाम भी कुछ भूल से बदला दिया दूसरे तरफ में, और सब उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ब्राह्मण लोग सरल होते हैं, वो दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास करने के बाद उसको शिक्षा देने लगे। कुछ दिन हो गए, कुछ दिन मैंने हो गया कि थोड़ा उसको शिक्षा दे दी अस्त्र शस्त्रों देने के बाद में कुछ ताड़ गए, ताड़ गए मैंने समझ गए कि परीक्षा लेने के लिए क्योंकि अक्षर ये हमसे छल करता है, मैं भगवत अवतार हूं ना, और सुनाम जी भगवत अवतार है, सत्यावीत अवतार, इसलिए समझ गए। और उन्होंने क्या किया, उसकी गोदी में सिर रख करके और सो गए, ज्ञान भूल करके सो गए। जब सो गए तो एक वज्र की लाव वो निकला और निकल करके जिसके जंघे पर सिर रख करके सोए थे पास ही में वो वज्र की आकर के और काटने लगा। यदि पैर हिलाते हैं तो गुरु जी उठ जाएंगे, इसलिए मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, गुरु जी को नित्य नहीं उठने दूंगा, ये उसका भाव। इसे वज्र की काटने लगा और रक्त निकलने लगा और निकलते निकलते वो इस पार से उस पार निकल गया, क्योंकि उसने अपना सी अपना पैर नहीं हिलाया, रक्त से उनका सी उनके रक्त में लगा। लगते ही अरे ये क्या, चौक करके उसे देखा कि लाल एकदम भरा पड़ा। बच्चे जी कहां से रखता है? तो देखा जैसे गुरु जी एक कीड़ा है यहां पर काट करके उधर निकल, तो कौन है बतलाओ तो? उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए, शिष्य के काट करके निकल गया और मेरी सेवा के लिए पैर नहीं हिलाया,
तो वो और बिगड़ गए। तू बोल सच सच बतला, तू ब्राह्मण बालक नहीं हो, ब्राह्मण इतना सहिष्णु नहीं होता है, उसको इतना धैर्य नहीं होता, तुम जरूर क्षत्रिय बालक। आप तो होता है कि गुरु जी ने तो जान लिया, अभी बतला मैं तभी तुमको अभी संपात दूंगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, बतला जल्दी। तो उसने कहा कि मैं उनका मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं, वो अधिरथ सुत का पुत्र हूं, सुत पुत्र हूं। तो तुम हमसे क्या झूठ क्यों बोला? क्योंकि आप शिक्षा नहीं देते इसलिए, और थर कांपने लगा। जे जाओ अधिक तो कुछ नहीं कहूंगा, किंतु यही अभी संपात करता हूं कि मेरी सिखाई में विद्याएं तुमको जब तक याद रहेगी, जब तक तुम कष्ट में नहीं पड़ेगा, जिस समय ऐसा कोई कष्ट घोर आएगा उस समय हमारी जितनी भी विद्याएं सब भूल जाएगा, और फिर विधियों कहां से तुम आ, क्योंकि हम नारे शास्त्र तुम फल की। तो इस तरह से यहां तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय होने के नाते छेद कर दिया तो भी तुम कृष्ण क्षत्रिय हो तुम, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम सुख वंश का है, इसलिए तुम इतने कठोर हो। गोपियां तड़फड़ाती रही, रोती रही, बन बन भटकती रही, पागल हो गई।
ये सौरी के लिए कहा,
उलाहना दे रहे हैं गोपियों के पक्ष लेकर के करें, वो सुख भी गोपियों के पक्ष धारे थे, इसलिए कृष्ण को वंशी कहा। स्मयमान मुखाम बुजा सुखदेव जी हो, मुस्कुराते हुए यहां पर प्रकट हो रहे हो, किंतु हो तुम क्षत्रिय। मुस्कुराते हुए क्यों? आंखें निगाह नीची करके वहां पर वो नीचे करके मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि गोपियों को हमने बड़ा कष्ट दिया, इसलिए लज्जित होकर के मुस्कुरा रहे। पीताम्बर धर सकली, वही पीताम्बर जो पहले पहन करके अंतर्ध्यान हुए थे वैसे ही पीताम्बर, और वही वनमाला जिनको गोपियों ने अपने हाथों से गुथकर कृष्ण को पहनाई थी, जो यहां से यहां तक लंबी थी, उसी माला को। अगर तो मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो वही माला पहन करके यहां पर उपस्थित हूं जिस माला को तुमने पहनाया था, ये दिखला रहा। किंतु जो कुछ अन्याय हुआ तुम लोग अपने भूल को त्रुटि को स्वीकार करते हुए मानो कृष्ण इस प्रकार से हंसते हुए लज्जित होकर के मनमथ मनमथ इस रूप में वहां पर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? उस समय उनका सपचा करके लज्जित होकर के आना, और हंसते हुए आना भी इतना सुंदर और मनोरम था कि साक्षात कामदेव भी वहां पर मोहित हो जाए, ऐसा सुंदर मनोहर। इसलिए साक्षात मनमत मनमत कृष्ण तो ऐसे ही सुंदर हैं, और भावपूर्वक जब तिरछी नजरों से लज्जित होकर के और गोपियों की तरफ में देख रहे हैं तो उनका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया। गोपियों ने कृष्ण को देखा, किसी ने किसी तरफ से देखा, किसी ने किस भाव से देखा, तरह तरह से गोपियों ने उनके तरफ तरफ से भावों की तरफ से उनको देखा। उसने ये दिखला रही है कि कृष्ण के आने के बाद में कृष्ण ने ऐसे चातुपूर्वक बातें की, चातु माने होता है मनोहारी बातें की, चापलूसी पूर्वक बातें की, और ऐसे ढंग से बात की कि गोपियों का विरह उत्साह वो संतुष्ट हो गए। विशेष करके कृष्ण ने जब ये कहा मैं तुम्हारा जीवन के लिए ऋणी बन गया, और उनका हाथों को हाथों में ले लिया, उनसे मिले, तब गोपियों को यह भय भी दूर हो गया जो भविष्य में फिर न चले जाए। इस तरह से यहां पर मिलन का जो आनंद है, गोपियों का जो प्रेम है, इसको दिखाया। इसलिए विरह के बाद में जो मिलन होता है उसे भक्तों को बहुत ही आनंद होता है, उसी को यहां पर दिखलाया है। और कह रहे हैं इतना बता याद आशा मात्रम कोई दृश्य अंत फिर दियो विधुर्य बासम मधुर गभीरे मधुपुरे दधाना कई शोरे वैसी सखीतान गोकुलपते प्रपत्ते था तेषां परिचयोऽवश्यम् नयनयो। बतला रहे हैं गंभीर माधुर्यमय कृष्ण समय गंभीर हैं जमीले तो माधुर्यमय जितनी उनकी मधुरता थी वहां पर प्रकटित हुई। से प्रविधाम है तथा तो जत स्थिर बुद्धिजन स्थिर आशा हृदय धरी तुम्हारो दर्शन करी बसी ऐसी सब सज्जन। गोपियां पर कारण ये कृष्ण के लिए ब्रजधाम में गोपियां आपकी आशा के लिए चीर दिनों से ये आशा लगाए बैठी हैं ये कब आपका दर्शन हो। तुम्हारो कैशोर लीला हृदय वर्ण कह जाए ये विशेष सवार कृपा करी नैन गोचर है या लीला करो जता दिया यही मात्र निवेदन करें। गोपियां यही उनसे प्रार्थना करनी है कृष्ण से कि तुम्हारी किशोर लीला को हम हृदय में धारण करके अभी तक जीवित हैं आपके दर्शनों के लिए अभी तक जीवित इसलिए आप कृपा करके हमारे मुझे हमें दर्शन दे करके और हम लोगों के साथ में लीला करें वृंदावन में यही हम लोगों की विशेष निवेदन है प्रार्थना है। इसके बाद में फिर आग्रह के साथ में वो उनको कह रही है कृष्ण से मिलन होने के लिए प्रार्थना कर रही है। मथुरा मंडल नाट मैंने जैसे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हैं भक्तों को भी साधकों को भी ऐसे आतुर होकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए तभी वो मिलते हैं बिना आतुर होने से वो मिलते नहीं। मथुरा मंडल माधु माधुरी मंडित साधी धन्य धन्य वृंदावन समस्त पृथ्वी में मथुरापुरी धन्य है। मथुरापुरी इसलिए धन्य है कि कृष्ण यहां पर प्रकट हुए और दूसरी बात उनकी लीला भूमि वृंदावन और ये गोकुल उनकी जो जन्मस्थली है मथुरा मंडल के अंतर्गत इसलिए मथुरा मंडल का भी प्राण है यह वृंदावन। इसलिए मथुरा मंडल माझे माधुरी मंडित साजे धन्य धन्य वृंदावन भूमि इस वृंदावन भूमि विशेष करके ये इसलिए धन्य है जहां पर पग पग में प्रत्येक चरणों में गोपियों की चरण भूमि निश्चित है गोपियों के लिए यह वृंदावन भूमि धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि तो द्वारका में भी है हस्तिनापुर में भी तो है कुरुक्षेत्र में भी तो है सब जगह जहां जहां कृष्ण गए थे वहां पर वो उज्जैनी इत्यादि में भी पढ़े लिखे थे तो वहां पर कृष्ण के चरणों की धूलि है किंतु उनको धन्य नहीं कह रहे हैं धन्य कहां कह रहे हैं वृंदावन इसलिए कृष्ण के चरणों से नहीं कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करने वाली गोपियों की चरण धूलि वहां है गोपों की चरण भूमि है विशेष करके राधा जी की चरण भूमि है इसलिए यह वृंदावन भूमि परम धन्य है। कहे तो वह नित्य लीला इसमें वृंदावन में कृष्ण की ऐसी लीलाएं हुई हैं जो विश्व में कहीं नहीं हुई मथुरा में भी वो लीला नहीं हुई। मथुरा में उनकी जन्म लीला नहीं हुई कभी भी देवे से झूठ बोले होंगे नहीं झूठ बोले यहां पर कोई बाल्य क्रीड़ा ही नहीं हुई यहां पर देवकी का भी संतान भी नहीं कभी किया। गोकुल में जैसे उनकी मनोहारी लीलाएं हुई यहां पर लीलाएं नहीं हुई। वृंदावन में जो राक्षसली जैसी है वो मथुरा द्वारका अयोध्या इत्यादि में उसको प्रकाश नहीं किया। यहां पर राष्ट्र अतिरिक्त भी और सब लीलाएं जो हुई हैं वृंदावन के बीच में राधा कुंड है गोवर्धन यहां पर जो लीलाएं हैं वो सब लीलाएं कहीं भी नहीं इसलिए वृंदावन
सबसे धन्य प्रदेश है।
यहां पर लीलाएं उन्होंने प्रकाशित की, अत्यंत सत्य से कृष्ण सुनी, कृष्ण शब्द कृष्ण शक्ति से कृष्ण सुनी, अत्यंत शक्ति से कृष्ण सुनी, गोपी भावे मुग्ध मौत जप कुमार श्रृंगार रस आमा आदि प्रणय निचय आमा सबेलाय पुनः क्रीड़ा करण वंशी बाध्य भजन दतन हे भजन दतन। आपने यहां पर गोपियों के भाव से मुग्ध होकर के उनके बसीभूत होकर के आपने श्रृंगार रस की जितनी भी लीलाएं की हैं अब पुनः उसको पाने के लिए हमारा मन तड़पड़ा रहा है, इसलिए पुनः वृंदावन में प्रकृत होकर के उन लीलाओं को आप पुनः संपादन करें। इसके बाद में रथ जाता का प्रसंग वाला वो श्लोक बतला रहे, गोपेश कृष्ण उपलब्ध किराग अभिषम जब प्रेक्षण विशेषु पक्ष कृतम पक्षपंथी वृद्धि हृदय कृतम फलम परिरभ्य सर्वा तद्भाव मां पूरमती नित्य विदान पूरा। इसकी हम कल चर्चा करेंगे, आरती की चर्चा कीर्तन करो नाम सराम हरे स्वदावलोकन अंतरेण अनाथ बंधो करणे के सिंधु अहम सहम प्रथम गया। ये भक्तिनो ठाकुर जी बिल्व मंगल जी का कृष्ण कर्णमित से ये श्लोक उद्धृत किया। यह विरह सूचक यहां पर भी बिल्व मंगल जी चिंतामणि के यहां से चले हैं और कृष्ण की गठिया पकड़ करके ले जा रहे हैं उनके बिल्व मंगल और वो कृष्ण के विरह में तड़पड़ाते भी इस श्लोक को साधक को ऐसे ही साधक जब भगवत दर्शन से गोकुल में जाता है तो ऐसे ही आता है, ऐसे ही भावनाएं मिलती, बिना ऐसी भावना के वो उसका दर्शन नहीं। अमन्य धन्यानि दिनांतराणि हे दीन बंधो अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत हंत कथम नयानि। हे दीन बंधो संसार में दीन कौन व्यक्ति है, कृष्ण भक्ति जिसको नहीं है वही दीन, जिसको भक्ति है जिनसे दर्शन नहीं मिले हैं अपने को दिन समझे वो कारण कि मैं बहुत दीन हूं हे करुणा सागर किंतु आप कृपालु हैं, हे हरि आप ही बतलाइए बिना आपके दर्शन के निशा दिन रात और अभावे भरी पल कैसे कैसे होती। बिल्व मंगल पूर्वोत्तर अपने भाव के अनुसार पुनः प्रार्थना करते हुए कारण इसके पहले उन्होंने बताया है हे देव हे दैव एक होने एक पुत्र इसके बाद उसको कहा हे अनाथ संतो मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं, चतुर्थ में सोचे हम लोग तो हम लोगों जैसा कोई अनाथ नहीं, एक क्रोध भी हम नहीं छोड़ सकते, एक मोह नहीं छोड़ सकते, विषयों के प्रति एक लालसा नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, इतनी छोड़ी सी शक्ति और कुछ तो बात क्या एक आलस्य नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग असहाय हैं। सारू सनातन का देखो विचार करो, सनातन गोस्वामी जी के रूप गोस्वामी का विचार करो, प्रभुनाथ दास गोस्वामी के विचार और उनके पहले जो प्राचीन लोग हैं उनकी तो और भी बात है। प्राचीना नाम भजन अतुलम सुनवतांग दुष्करण वो तो इतना दुष्कर भजन कठोर भजन करते थे। हम लोग कहते हैं महाराज जी एकादशी नहीं हमसे हो, महाराज जी कहते हैं मेरी थी नहीं हो। डॉक्टर ने कहा दिया कि एकादशी मत करेंगे, मृत जला तो जला, मृत जला तो डूब जाएगी। ऐसे असहाय शरीर स्वस्थ सब कुछ भी नहीं कर सकते। प्रचीनानंद भजन अतुलम एक दिन भोजन नहीं छोड़ना, एक दिन के लिए नहीं कर रहे। चंद्रकू ने कितने दिन तक भोजन छोड़ा था, साफा जाकर खाया नहीं, ध्यान लगा दिया। एक साधारण चीज पाने के गुरु जी ने देखो तो पहले महीने में उन्होंने एक दिन अंतर की दो दिन अंतर से अन्न जल तो सब छोड़ दिया। सूखे पत्ते लेते थे और उसको भी दूसरे महीने में ये पत्ता खाना भी छोड़ दिया और तब पानी लेते थे सात दिन के अंतर से या कितना दिन से। तीसरे महीने में वो पानी लेना भी छोड़ दिया, हवा लिया दो बार, एक पक्ष में एक बार हवा खाकर के ही जीवित रहे प्राण है और उसके बाद में अपने प्राणवायु को एकदम रोध कर दिया। सोना कोना तो सब कुछ हो गया और ऐसा तो याद प्रभु से रहा नहीं गया, एकदम पांच या छह महीने में। कोई ऐसे हैं हम लोग बिना पानी का रह जाए, निर्जलाय काशी से नहीं रह सकते। पंद्रह दिन बीस दिन छह महीना के छोड़ने की बात अलग रहे, भगवान इतने सस्ते नहीं है जो मिलते, इसलिए निराशा हो जाए। इतने असहाय नींद नहीं छोड़ सकते, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी बर्दाश्त नहीं, मान अपमान भी सज्ज नहीं होता, मान अपमान भी सज्ज नहीं। तो शायद जिसे मौजूद कहते हैं वो खत्म
आधारमण
बताऊंगा। जब हम देखते हैं प्राचीन लोग कैसे 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 कठोर उसके उन्होंने साधन करे, तब भगवान ने उनको दिया क्या, किसी को भोग दिया, किसी को मोक्ष दिया, किसी को पुत्र दिया, सनातन इत्यादि कैसा तो लोग भजन किया। कोई अपने लिए किसी कहीं नहीं बांधा, रसोई नहीं बनाई, लवण कैसा होता है ना, रसा स्वाद के लिए कभी देखा नहीं, और लवण
साथ नहीं लगे,
कुछ भी नहीं, जीवा पर नहीं दिया नमक, ये नमक कैसा होता, बिना नमक का खाया नहीं जाता, रसोई नहीं जाना दे रहा ऐसा, और सोना कैसा बतला है, कभी आधुरी थोड़ा सा डेढ़ घंटा एक घंटा कभी मूवी बना,
सूखा हुआ चना चिदा लेते थे। इस तरह से भजन अभी हाल में कुछ दिन पहले हमारे गौतम सूरदास का भजन आ रहा है, जगन्नाथ दास देख रहे हैं कैसे कैसे भैरात्र के साथ में क्या से भजन किया। पाषाण की रेखा मिट सकती है किंतु इनके भैरात्र की रेखा नहीं आती। कितना तक और साधन भजन किया दिन रात, हम लोग दो मिनट में सीधा ऐसे बैठ नहीं सकते, सब समय आराम चाहिए, फ्रेशफुल खाना चाहिए। आजकल आम का दिन है ना, सनातन गोस्वामी आम के दिन में जानते नहीं कि आम का मौसम आया कि गया। और हम लोगों का देखो तो ऐसे भजन होता है, ठीक है कहते प्राचीना नाम भजन दुष्कर्म सुन्नता नैराश्य जलत हृदयम भक्ति ले सावस, तनिक भी भक्ति नहीं है जो विचार करेंगे। विश्वदृषि सभाकर्ण कारुण्य ऋषि आशा बिंदु क्षिपन मिधम अंत सर कहते हैं बस एक चीज के लिए मैं आशा लेकर के अभी जीवित हूं, आपकी करुणा की वर्षा हो रही। कहीं भी कहीं एक कुंड या छिटक फुटक करके कहीं से कोई एक बिंदु का भी बिंदु तो हमारा जीवन के साथ होगा, इसीलिए साधन भजन के द्वारा नहीं ये कारण है। कौन रघुनाथदास पूछा इतना भजन करके कारण तो हम लोग की स्थिति देखो तो, इसलिए हम सब विषय में असहाय। एक थोड़ा सा अपमान का कोई कारण हो जाएगा बस हो गया भजन, गुरु गुरु रहे और पैसा यार भगवान भी रहे, इसलिए हम लोग बड़े असहाय हैं। कोई एक गंदी आदत नहीं छोड़ सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है जो गंदी आदत हो। एक आदमी ने हमसे प्रतिज्ञा की, संकल्प किया, हमने कहा जो धूम्रपान छोड़ दो, अजय छोड़ दो। मैंने कहा जो अच्छा तो गले में एक माला तुलसी को दे दो। दूसरे दिन उसके घर वाले जी महाराज वो कहता है कि प्राण जाने पर भी हमारा धूम्रपान नहीं छूट सकता। और क्या आदमी करेगा, कहे ठीक धूम्रपान उसका चलता है। जब इतनी भी चीजें हम नहीं छोड़ते क्या छोड़ेंगे, इसे कहते हम सब समय असहाय जी हैं, इसलिए हम अनाथ हैं। वैष्णव का संग जिनको है, हमारा जैसा नहीं, वैष्णव का संग कैसा, जैसे रघुनाथ गोस्वामी रूपोस्वामी का संग करते, जैसे प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते, ऐसा संग कैसा संग, भक्ति विनोद ठाकुर जी का संग प्रभुपाद जी करते हैं, अपनी स्वतंत्रता एकदम नहीं होती। हम लोग गुरु जी का संग करते हैं किंतु अपनी स्वतंत्रता को ठीक रख करके गुरु जी का संग करते हैं, इसलिए उनका संग का प्रभाव हमारे ऊपर में नहीं होता, इसलिए हम लोग अनाथ रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए वह देश वह काल और सब कुछ जिसमें भगवत भाव का संबंध नहीं है वो बेकार का है। बिल्लु मंगल जी चलते 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 निराश हो गए हैं और निराश होकर के ये श्लोक हे अनाथ बंधो मैं विश्व में देखा जाए तो मेरे समान और कोई अनाथ नहीं है। जगाई मधाई है ना सनातन गोस्वामी, और विचार कीजिए पासी पास में जगाई मधाई, दोनों में अधिक पापी कौन है,
या दोनों में अधिक योग्य कौन है? सनातन प्रभु जी शोचनीय है न जगाई बधाई?
जगाई बधाई,
फिर भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं जगाई मधाई से पुरुषे की धैसे मुंह से लभित कट्टी से दी मोर नाम जेई गए तार पाप पाप है मोर नाम जेई सुने तार पुण्य है। मेरा नाम जो सुनेगा सनातन उसका पुण्य सब खत्म हो जाए, मेरा नाम जो लेगा उसको पाप होगा। सनातन गोस्वामी कब कह रहे हैं? वृंदावन में आकर के कह रहे हैं या सब कह रहे हैं? बताओ तो ऐसे ही देखता है वो व्यक्ति कि मैं ही एकमात्र अनाथ हूं और सब सनातन है, वो ऐसा देखता है। जैसे श्रीमती राधिका जी पुलिन कन्या को देख रहे हैं ये सनातन पुलिंद कन्या को देख रहे हैं कि ये सनातन क्यों? कृष्ण के चरणों के कुंकुम को उसने अपने शरीर में धारण कर दिया, मैं मर करके वही पुलिंदी होनी चाहती हूं। पुलिंदी से कोई गुण कोई गुण ही का सकता हूं, कहा राधिका जी कहा पुलिंदी कर। ऐसे बिल्लु मंगल जी तो भक्ति है किंतु जो चीज को चाहते हैं वो चीज नहीं है।
हमें यहाँ पर जो ऐसे अधिकार की बात है ये तो निरपेक्ष अधिकारी वालों के लिए बात है कि यदि कोई व्यक्ति निरपेक्ष अधिकारी हो तब उनके लिए ये समस्त संभव है। अभी तक जिनको संसार में सापेक्ष है तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
उनके लिए यही कथाओं को सुन करके तब ऐसा यही कथाओं को सुने बिना भगवान की कथाओं भक्तों की कथाओं को सुने और कनिष्ठ साधक को मध्यम साधक को भी इन्हीं बातों को सुनने से भगवान की कथाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं अनाथपन आप अनाथों के और साथ ही साथ में करुणा सागर हमारे जैसा दीनहीन विश्व ब्रह्मांड हो गए। इसे भक्त जो होता है वो देखता है कि मैं दीनहीन सब हूं, यदि विष्णु मंगल जी इतना दीनहीन बन गए सनातन गोस्वामी इतना दीनहीन बन गए तो सचमुच हम लोगों के लिए क्या है? हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? होता है ऐसा नहीं होगा, ये चिंता किसको आएगी? जिसको प्रेम होगा, जिसको प्रेम नहीं होगा ना ऐसा तो चिंता भी ऐसी नहीं है। स्वभाव इसलिए हे करुणा के एकमात्र सिंधु समुद्र करुणा का सिंधु किस लिए कहा गया? कुआ में तो चारों तरफ से बंधाई होती है ना, उसमें जल लेना जरा मुश्किल है और करुणा का सागर यदि उमड़ रहा है तो सबको एकदम नहला जो जाएगा। अरे तद अवलोकन अंतरेण ये दिन और रात ये खड़ी ये जाम ये पल और क्षण समस्त और धन्य है अमून्य धन्य है अमून्य धन्य मैंने कहा अमुनि अमुनि मैंने ये जो है ना क्या दिन रात क्षण काल या देश मैं जो कुछ है ये सब सब अधन्य जिससे कृष्ण का संबंध नहीं। अभी हम लोगों का कृष्ण से यदि संबंध नहीं है तो हम लोग भी ऐसे ही अखंड है, हम लोगों का जीवन का कोई भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कहते हैं अमंगल स्वरूप अमंगल स्वरूप मैंने नित्य दुखप्रद है। हम समझ रहे हैं इस चीज को दुखप्रद है
किंतु निकलने की कोशिश में हमने, और कोशिश करने पर तो वो होता नहीं और फंस के जाते हैं दलदल में। जो धन को प्राप्त करे वो धन्य, धन्य माने क्या है, धन्य है एक धन से धन्य, धन माने होता है अर्थ, अर्थ माने क्या होता है
प्रयोजन,
प्रयोजन माने क्या है, हमारे शरीर के लिए प्रयोजन है, हमारे मन के लिए प्रयोजन है और एक हमारी आत्मा के लिए प्रयोजन है। यहाँ पर शरीर से प्रयोजन जितनी भी चीजें हैं वो हमारा अर्थ नहीं है, वो अर्थ परमार्थ कौन है जो आत्मा के लिए आवश्यक, आत्मा के लिए कृष्ण एकमात्र धन, उनकी भक्ति एकमात्र धन और इसलिए जो आपके भक्ति से धनी है वो धन्य है और बाकी सब अमूल्य धन्यानि, सब कुछ अधन्य। यदि इस विषय को अनुभूति हो जाए ना, उसमें प्रतिष्ठित आदमी हो जाए तो उसी दिन भक्ति हो जाए। इसलिए समस्त भुवन में सभी समस्त भुवन के लोग निर्धन हैं, वही व्यक्ति धनी है जिसके अंदर में प्रेम का धन है।
कृष्ण प्रेम धन जाति,
कृष्ण प्रेम किन में नहीं है। अच्छा कृष्ण बात को छोड़ दो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति भी यदि है तो वो धन्य है। कृष्ण संबंधी यदि श्रद्धा भी विदित हो गया तो भी वो धन्य। इसलिए जिसको श्रद्धा है वो उससे तृप्त नहीं होगा, जो जिसको निष्ठा है वो भी तृप्त नहीं, जिसको भक्ति है वो भी तृप्त नहीं, और जिसको प्रेम है ना वो भी तृप्त नहीं। जिसको स्नेह हो गया उसे पढ़कर के प्रणय हो गया, अनुराग हो गया, और भी विवल होता चला था, तृप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही नारद जी का बर है या भक्ति का ऐसा ही स्वभाव, इसलिए कहते हैं राधिका जी कहती हैं कि ये हिरण्य धन्य है जो कि कृष्ण का बिना किसी बाधा का दर्शन करती है। हिरणों को धन्य नहीं कहा, हरिणियों को धन्य कहा। इसके हृदय में आपके चरण का नित्य विहार होता है वही लोग धन्य है, अन्यथा वो धन्य नहीं। और जिसके हृदय में प्रेम की डोरी से आप बंधे हुए, नित्य बंधे हुए आप, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते हैं, वही एकमात्र धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धना तेपी धन्य निवसत हित देशांग श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय में एकमात्र भक्ति है वही धन्य है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो सबसे विश्व ब्रह्मांड में निर्धन है। देखिए ना, अभी हर्षद मेहता नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कितना हजार करोड़ की कितना की औरत खरब
5000 करोड़
पेट भरा उसका, ये पेट कभी नहीं भरेगा, वो भरेगा सनातन गोस्वामी के जैसे वैराग्य से ही भर सकता है, जब जब वो अपनी है कृष्ण प्रेम की जरूरत। इसलिए उसकी आशा छोड़ो और भक्ति में आओ, तब तो जीवन हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं, बूढ़े लोग हमारे जैसे, जिनके लड़कों ने उनका सब ले लिया है तो बड़े दुखी हैं। लड़का कहता जो पिताजी घर में बैठ, इधर मत आना, तुम घर में बैठो, खाने पीने के लिए हम दे दें। तो देखो तो हमारी सारा जीवन का कमाई ले और हमको घर में बैठा रहा, ये उसके दिमाग में नहीं आ रहा, सोचता भी है कि ठीक है कुछ हद तक, किंतु मन नहीं मानता और उसके लिए दुखी रहता। कितना बड़ा भारी सुजोग भगवान ने दे दिया, जब बैठ करके खाओ पियो भजन, मन नहीं मानता, उसी की याद आती है, सदमा से शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है।
किसी आदमी का ब्लड प्रेशर है, कुछ देर के बाद में मर जाता है। इसलिए कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनार्थे, सकल संसार में विश्व में वही निर्धन है जिनको कृष्ण भक्ति नहीं है, और कृष्ण भक्ति थोड़ी सी भी आ गई तो इस जगत के धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सनातन गोस्वामी जैसे मणियों को कितनी, 7 मणि में 8 मणि, 9 मणि यार सबको छोड़ दिया, एक उसका 9 पर ईशान लेकर के आ रहा था। अरे बेटा और तुम्हारे पास में कुछ है तो प्रभु एक और, अच्छा बड़ी मुश्किल से तुम्हारे 7 को तो मैंने हटा दिया और तू अभी एक ले आ रहा, वही हमारे और तुम्हारे प्राण का घातक होगा, उसी के लिए दूसरा कोई आएगा और गर्दन काट करके अभी तक नहीं छोड़ सका मैं। अरे आप प्रभु आपकी सेवा के लिए रख, तो तू सेवा नहीं है तो तुम्हारा और हमारा प्राण चले जाए, तुम इसको लेकर के चले जाए। रोता रह गया कि नहीं दिया, क्यों छोड़ नहीं सकता ईशान, क्योंकि भक्ति नहीं है ऐसी, अभी काने से भी नहीं छोड़ेगा। वैसे ही जिनको वैराग्य नहीं है उनको मठ में आकर के हम कहें ये वैराग्य सीखो तो सीखेंगे, सीखना पड़ा था वो लोग क्या करेंगे, कुछ दिन तक ठीक रहेंगे, इसके बाद उसका घड़ी लेकर के रख लें, उसका कपड़ा इधर का उधर लें, उसका कुछ ले लें। संत लोग कहते हैं कि ये बेटा तो मानेंगे नहीं, छोड़ अपना समय बर्बाद, इसलिए तुम लोग भी खूब सोच समझ करके ऐसे रहना, वैराग्य के लिए भगवान का भजन करना, यदि भगवान का सचमुच में भजन करना है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड में वही निर्धन है जिसको भक्ति नहीं है, और जिसको भक्ति हो गई वो संसार में विश्व में सबसे बड़ा धनी है, उनका जीवन धन्य है। हरिरत्नी के लोकम सर्व था अतो विहाय प्रसिद्ध हृदय, भक्त पाद को बंद कर देता है, इससे तू अपना बात बंद करके घर में रखूंगा और ये इस अंधकार में तुम सदा ऐसे इच्छा करते हो। इसलिए जब भक्ति चाहिए तो ऐसी भक्ति चाहिए, छटपट आओ मत, एक दो दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं है, एक उम्र की बात नहीं है, एक जीवन की बात, ऐसे ही भजन करते 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 प्रभु जब देखेगा तब वो। इसलिए कर ना, मैं तो नित्य आपके ही चरणों के बीच में अपने चरणों के वही एक बात कर देखते उनके चरण कमल पर। इसलिए आपकी माधुरी की कोई एक छटा भी हमारे हृदय में चकास मैंने प्रकाशित हो, नारद जी या भगवत भक्त हो ऐसे ही सहज समाज समाज में आ जाते हैं, किस लिए आते हैं, इसका कारण कभी न कभी किसी न किसी तरह से झलक दर्शन कर लेते हैं। हम का ही झलक हो या भगवान का झलक हो, यदि एक बार देख लिया ना बस बीत गया। बरबस उनका जैसे गोपियां ने कहा है, हम तो उनको बोलना चाहती हैं और तुम हमको शिक्षा दे रहे हो, उनका ध्यान हमारा तो अपने आप ध्यान लग जाता है, और तुम कहते हैं जैसे इनको छोड़ करके और उनका ध्यान लगाओ तो हम तो विषय का। इसे एक बार जब जैसे कि नारद जी को खुलासा हो गया झलक, बस जीवन भर नहीं पूछे और उनका प्रेम बढ़ता चला गया। ऐसे ही भगवान कभी कभी ऐसा लिखा गया है ना, गर्भ माता के गर्भ में प्रभु कभी दर्शन देते हैं, किनको देते हैं भाई, खूब सुखमान होगा सबको नहीं, दुख तो सबको होता है किंतु सुखमान जीवन को कभी दर्शन देते, और जिसका दर्शन हो जाए ना वो जन्म लेने के बाद में कैसी उसकी स्थिति होगी, उसका संस्कार बन गया ना और सहज रूप में उसकी। जैसे कि चपला चपक करके और एक क्षण के बाद में अपने दर्शन को बंद कर देती है,
ऐसे ही आप कभी छोटी सी एक झलक देकर दिखाई पड़ते हैं झलक, और उसके बाद में फिर लुप्त हो जाते हैं। और बतलाइए मैं कैसे अपने जीवन को बिना आपके दर्शन के कैसे रखूं, हरे सब अवलोकनम अंतरे, बिना आपके दर्शन के मैं नहीं जा सकता, बच नहीं सकता। हम लोगों के लिए अभी हम लोग खाने पीना भी ना करते, उनके दर्शन की अभी ऐसी बात सकता नहीं है। कि अनाथ बंधो, हम जैसे अनाथ के एकमात्र आश्रय स्थान और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति को पाने के लिए भक्ति नहीं है बात तो थी, किंतु मिलेगी कैसे? भगवान के बिना भगवान, क्योंकि भगवान के हृदय में भक्ति, यही भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान से ही प्रकाशित होती है। इसलिए भक्तों के हृदय में अथवा भगवान के हृदय में भक्ति दूसरी काम किया जा रहा है, इसलिए बिना भगवान की कृपा के यही संभव। जैसा कि यह कहा गया है, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के अनुगामी है। बातचीत भी है, आपको एकमात्र यदि कोई निष्किंचन यदि हो जाए किसी तरह से तो वो मिल सकती है। इसलिए कह रहे हैं एकमात्र आप निष्किंचनों के प्रिय हैं। कैसे निष्किंचन? जैसे सुदामा, तो सुदामा से हमारा कोई तात्पर्य नहीं, किंतु अब पांडवों के बंधु हैं तो पांडवों का वक्त भी हमारा नहीं, तो कैसे कैसा आत्मचन होना चाहिए? रूप सनातन कैसे महाप्रभु जैसा महाप्रभु अपने जीवन में दिखलाए ना, महाप्रभु जी के पास में क्या रहता था? कस्तूरी में थे, तो उन्होंने कहा उनको अपने गोविंद को, गोविंद हम मुझे यहां नहीं रहना है, ये लोग विषय का हम हमारे पास में विषय बुलाए, इसलिए आज भी चलना है, हमारा पूरा सामान ले लो।
कमंडली और बहिरुआ सुधा चलो।
अच्छा, महाप्रभु का पूरा सामान क्या था? देर को रही देर और कॉपिंग का
दंडभाग दिया,
और दंडभाग को पहले नित्यानंद प्रभु जी ने थे, और कमंडल महाप्रभु जी छोड़ दिया। बस डोर कॉपी बहुत बात, बस तो उन्होंने साथ ही साथ में कितने थे हमको, तो हम लोगों जैसे पांच सात देरी तो होगी, पांच सात देरी नहीं बस एक देर, एक दिन सीखने के लिए एक दिन, अभी कभी रखते ही नहीं थे। ऐसे अकिंचन महाप्रभु के जैसा महाप्रभु जी का आदर्श कोई भी चीज नहीं, सिर लगाने के लिए उनको मृत्यु का रोग है, वो कहते हैं विकसित हो जाए, मृत्यु का नहीं रोग है, उनका रोग है दूसरा कृष्ण का रोग, वो समझते कि उनके शरीर में दर्द हो जाता, चंदन का तेल और कहां बंगाल से ले गए, महाप्रभु जी ने जगदानंद जी ने दे दिया, महाप्रभु जी ने कहा इसको जगन्नाथ जी का प्रतीक चला दो, तो ये बिगड़ गए और खड़े को लेकर के छोड़ दिया, और कपाट बंद करके रह गए, दो तीन दिन तक का दरवाजा नहीं खोला, पानी नहीं पिया, खाया नहीं, भोजन नहीं किया होते, और महाप्रभु जी ने कहा जो मैंने सौदा कर दिया, इसलिए उनसे डरते हैं आप, दरवाजा खोला नहीं है। मैंने कहा देखो मुझको बड़ी भूख लगी है, तीन दिन से खाया नहीं, मैं अभी समुद्र स्नान करने जा रहा हूं, और स्नान करके अभी आया 15 मिनट में, भोजन तैयार मिलना चाहिए, चले इनको रोक तो हुआ है, घर अपना कष्ट से ले आए और उन्होंने तोड़ करके फेंक दिया। तुम देखो सेवा ऐसी चीज है, इनके वैसे प्रेमी का दिया जैसे मुझको दुख लगी है, मैं जा रहा हूं स्नान कर, बस मान पान करो सब ठीक गया,
पंद्रह मिनट में ही आएंगे, पंद्रह मिनट में उनको हम तो भोजन कराएंगे। बस साथ ही साथ में एकदम और आखिया पार
कलर पार
केले के पत्ते में बड़े बड़े, ये साधारण छोटे छोटे नहीं, बड़े केले के तरह तरह के व्यंजन लगे, कहां से इतना जल्दी बनाया
पत्ते का चार होता है
और सब कुछ बना करके एकदम रख दिया। मां प्रभुजी तीनों हंसते हुए आ गए, उनको संदेश था कि ये बनाएगा कि नहीं, क्योंकि इसने मान किया है, सब एकदम तैयार मान हो तो ऐसा गुरु के प्रति कृष्ण के प्रति भगवान के प्रति तब पर जो मान है तो वो है क्रोध और द्वेष और ईर्ष्या जो कि एकदम पतन कर मान का आदर्श इनके प्रेम है जो खास कर मां प्रभु आए देखा सब कुछ तैयार गोविंद विशाख है उनका जैसे एकदम आसन करके और पत्ते दे करके सब रख दिया है जैसे अपने नहीं कर रहे जाओ तो प्रभु से बहुत होते हैं सब तनहा भामा जी ने मान किया है मां प्रभु जी समझ रहे थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं अभी खाऊंगा अच्छा पहले मैं नहीं खाता तो अंत तक दोनों को दो पत्तों में देगा मैं भी खाऊंगा ये भी खाएगा तब तो मैं खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा आप बड़े असमंजस में करे फिर उन्होंने कहा जिसे प्रभु से कह दो ये पहले खा लें तो मैं प्रसाद खाऊंगा मां प्रभु जी ने कहा कि पाएगा कि नहीं पाएगा यदि नहीं पाएगा तो मैं भी नहीं पाता हम तो पूछे लोग गए पहले मैं प्रतिज्ञा करके संकल्प करके कहता हूं मैं जरूर पाऊंगा पहले महाप्रभु किंतु महाप्रभु से बात बोले नहीं वो गोविंद के माध्यम से बात कर गोविंद जी ने कहा महाप्रभु से अच्छा सब ठीक किंतु तुम यही जाना मैं तो विश्राम करूंगा भोजन के बाद में तुम यही करा करके देखना जो वो खाता है तो ठीक है मैं तब फिर कल से हमारा उपवास करूं महाप्रभु ने प्रसाद पाया इसके बाद में उन्होंने यदि ऐसा होना तो महाप्रभु जी के पास में कुछ भी नहीं अपना था गृहणी के पास भी ऐसा रहे हम कहते हैं कि तो हम भी निश्चिंचन होंगे क्योंकि जब तक निश्चिंचन ऐसा नहीं होंगे तो भगवान का प्रेम होना बड़ा भारी कठिन हम लोग चेष्टा करें ऐसा सभी को स्तंभ ऋषि को बनाए हे हरे मैंने ये हमारे दुर्गुणों को हरण करने वाले अपराधों को हरण करने वाले हमारे अनर्थों को दूर करने वाले अनर्थी चित्त करने वाले ये दिया दे और उसके बाद में हमारे चित्त को हरण करने वाले तो मैंने इन दुखों को कौन हरण करेगा आपका मैं दर्शन नहीं पा रहा सब पर कर रहे हैं इसलिए साधक हम लोग किस लिए घर छोड़ करके आए विचार करो किस लिए आए माता पिता को कष्ट दे करके धन संपत्ति छोड़ करके कुछ न कुछ सभी छोड़ सकते हैं अच्छे से बढ़ते लड़के इसलिए आए थे मात्र भजन करने के लिए तब देखिए हम भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसलिए ये कह रहे हैं मेरे गुरु को आप इस बात कौन मुझे प्रेम दे करके जो बहन का ऐसे भावना करनी हे कर्मी के सिंधु हाँ एक आशा चूंकि है आप करुणा के सिंधु हो मैं अनाथ हूं मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं और आपके जैसा कोई करुणा वाला नहीं यह एक है मैं सबसे दयालु था मौसम कौन खुदी में फल पान और एक और भी है हमारे समान ब्रह्मा का स्वामी का हिस्सा है बहुत कमो ना पिता पाठ
ना पराजित
ना पराजित कश्चन
कोई धन
संभार तुम्हें लज्जा सत्या बदलाइए मेरे जैसा कौन अपराधी और मेरा जैसा कौन दुर्भागा होगा और आप कहां बस यही जाता है कि आप करुणा सिंधु आपके एक करुणा के आप तो सिंधु मैं एक बिंदु से लो मात्र से ही मैं मेरा जीवन के साथ हो जाएगा यह बात ठीक है कहां मैं एक विषय का कीड़ा और कहां यह प्रेम पारिजात है
परिजात में स्वर्ग में परिजात कुछ होता है चिंता में पुरुष चिंता में कहा चिंता मन और कहा मैं विषय का किया तो भी आशा रखता हूं इसी का नाम है लोग। एक दलित व्यक्ति था वो भी कायना और निर्धर क्योंकि वो इंग्लैंड की रानी से या राजकुमारी से शादी करना चाहता बामन होकर के
चांद
पकड़ना चाहता हम लोगों के लिए भक्ति ऐसी ही है तभी इसके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं हम वही चाहते हैं और अंत में वही लेकर के हम रहे इसके केवल पर विश्वास आगे पर अनाथ बंधो करने की कोशिश सुगम करें ही सब सावरे सुगम करें सब सामरे ऐसी दृष्टि जो हो अनकरणी करनी करहु करनी करहु न कोई ऐसा कर दे सुम करें सम सामरे भक्ति बड़ी दुर्लभ है बड़ी दुर्लभ किंतु सामरे क्यों है ना जिस पर दृष्टि हो जाएगी सब मात्र में क्षण मात्र में अनकरणीय कर प्रभु की कृपा हो जाएगी तो पंगे
भूकंप की बाधाल
सब कुछ संभव हो सकता है हे प्रभु ऐसे नहीं मन में करें श्लोक पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग भी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ऐसे ही भावना करते कहते प्रभु आप मेरी विनती को कब स्वीकार मेरी विनती कब स्वीकार होगी हरे कब आप हमारे दुखों का हरण करें हे हरे हमारे मन को कब आप हरण करें हे हरे और अपनी प्रिया जी के साथ में जो आपके मन को हरण करती हैं उनके साथ कब हम खुद प्रसन्न दें स्वीकार करें मैंने पथदानी भवक आप हमारे नैनों में कब पथदानी होंगे कब हमारे नैनों में आप दर्शन देंगे हा है नैने मैं अपने मन की पीड़ा किससे कहूं ये कह रहे हैं पुण्य मंगल जी कौन मेरा हित ऐसी है जो मेरी बात कान लगा करके सुने बस आप ही सुन सकते हैं हमने सुना है जितने अनाथ हो गए आपकी बात उनकी बातों को आपने सुना है मेरे दिल पर जो बीत रही है उसका विश्वास भी कौन करे ये पहले श्लोक में आती भूमि या किम कोई नारायण दास हैं बड़े भक्त रसिक हैं उनकी बहुत दिन पहले हमने कुछ कही थी सखी मेरे मन की हो जाने सखी मेरे मन की हो जाए काशू कहूं सुने जो चित गए चित की बात बखाने ऐसे को है अंतर जाने तुरपति पहचाने नारायण को जो भी करेगी अब कोई सच माने कब कोई सच माने आपके अतिरिक्त तो नहीं है जो सुने और सतर्क ही उच्चाकार कोई तो समर्थ भी नहीं आप ही एकमात्र समर्थ हैं प्राणनाथ मेरी दशा पर कुछ तो गया करो और कब तक चढ़ पाओगे प्यारे दर्शन दीजिए आर जलदिन कमल चंद दिन रजन चांद के बिना जैसे रजन और जलदिन कमल ऐसे तुम देखे दिन सजनी आकुल व्याकुल शुरू नयन दिन गृह कलेजे था दिवसन भूख नी जमी गए मुखसो कहत न आवे बहन कहा करो कुछ कहत न आवे
मिलकर सब तपन हुआ है क्यों प्रसाद और अंतर ज्ञानी आत्मलोक के पार दर्शन मीरा दासी जन्म जन्म की परी तिहारे
ये मीरा बाई का पति इसका तो बाहरी अर्थ बतला आप भीतरी अर्थ बतला रहे हैं ये पिंड मंगल जी कर रहे हैं पहले जी बतला और अपने तीन अवस्था प्रभु को निवेदन करके उनकी कृपा के लिए प्रार्थना कर और यहां कर रहे हैं अंतरंग लीला पर अर्थ यह है राधा जी दृढ़ संताप से अत्यंत विकल होकर के ये प्रार्थना करेंगे इसे राधा जी की ये बात पिंड मंगल ने उसे सुना और सुन करके अपने हृदय में रख करके उसी को उन्होंने किया पहली बात मैं अपनी दशा का बनू और यहां राजा जी के गृह का ये वर्णन कर हे हरे तुम हमारे चित्त को चोरी करने में बड़े चतुर और तुमने हमारा चित्त चोरी कर लिया मेरे प्राण को तो हर तरफ ले गए आप मुझे मेरे दुख को भी तो हरण करो प्राण ले गए तो बहुत अच्छी हमारे जो दुख है आप दुखों को भी हरण करो मेरा दुख क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है मेरा दुख यही है कि तुम्हारे दर्शन के बिना अभ्यन्य दुर्दिनों को कितन मैंने आज नहीं मिला दर्शन कल नहीं मिला ये सब अभ्यन्य दिन है मैं कैसे दे सकता तुम्हारा बिना एक एक पल एक एक क्षण दुख के समान प्रतीत होता है तुम जुदाए से काम अपश्यता तुम्हें भागो एक एक पल तुम्हारे दर्श के बिना एक एक कल समान के बीत रहा है सारा जगत शून्य के समान में दिखाई मैं कैसे इन कष्ट में जीते दिनों को दे सकता तुम कोई उपाय बतलाओ एक संसारी व्यक्ति कुछ लूट जाने पर मान के स्टेशन से आ रहा था सोने की जंजीर और सब अपने सूटकेस में रखा था एक लाख रुपए का नोट भी रखा था और आपके बीच में उसने कोई लेकर के चला बतला उसके लिए कितना दुखी होगा और उससे कोटि गुण ये सब चीजें मूल्यवान भगवत भक्ति और उसे छोड़कर हम आनंद के साथ मिलती है भक्तों को ऐसा ही होता है यदि हम लोग भजन करेंगे भजन करते करते इसकी उपलब्धि हो सकती है बस तुम्हारे दर्शन के बिना हृदय में आग जल गई वर्षा की धारा की भांति नेत्रों से अशुभ धारा प्रवाहित हो फिर भी यह बात आग दूरी से नहीं हो गई अधिक धरती जा रही एक एक निवेश मेरा एक एक दुख समान दिख रहा सारा संसार सुना सा लगता है बोलो अब मैं क्या करूं दीवाई कम विषय चक्षुषा प्राप्ति शाही सुनना जगत सर्वम गुरु मिल गए तो कहता है कि जाओ घर में सुख से रहो मुझे क्या कहा घर में जाऊं सुख से रहूं सुख से कैसे रह सकता हूं क्या राजा की तरह सुख से कैसे घर में जाऊं प्रियतम हमारा घर कहां घर ही कहां और कौन हमारा है घर में जो है तो सब के सब दुखदायी है इसलिए बुद्धिमान पुरुष नित्य क्रिया आप में ही अनुराग करते हैं आप ही उनके घर हैं आप ही उनकी संपत्ति हैं आप ही सर्वस्व हैं कुर्वन्ति ही कई रतिम कुशल आत्म आत्मा नित्य प्रिय प्रतिष्ठार्थ आप गई श्रीमद भागवत में गोपियों ने कहा भगवान से भगवान ने कहा अरे रात हो गई और तुम लोग लौट जाए और सुख से घर में जाओ रहो और पतियों की सेवा करो पशुओं को देखो गायों को दूधो रोटी पकाओ घर में सुख से जाओ कई गोपियां कार कुर्वन्ति ही कई रतिम कुशल आत्मा जो बुद्धिमान पुरुष हैं जो चतुर हैं वो तो आपके चरणों की सेवा करते हैं और आपके चरणों में रति करते हैं अनुराग करते हैं नित्य रहे नित्य प्रिय नित्य प्रिय ये संसार में पति पुत्र आदि भी
ये जितने भी हैं वो आरती थी, आरती देने वाले, दुख देने वाले। विशेष करके वो जो हमको सबसे अधिक प्यार करते हैं संसार में, वो सज्जनार्थ दर्शी के समान है। वो हमारा अमूल्य भक्ति धन इधर से उधर लेकर के नष्ट कर दे। हमारे पति पुत्र बंधु बांधव सबका त्याग करके अनाथ हम बनी हुई है। हे अनाथ बंधु, तुम ही हमारे एकमात्र अनाथ हो। बंधु और सर्वस्व धन तो तुम ही हो, तुम्हारे बिना सब अधन्य है। यह जीवन अधन्य है, यह समय अधन्य है, वह स्थान अधन्य है, सभी कुछ अधन्य है। इसलिए हम पर अनुग्रह हे आत्मंदो हे हरे, अनुग्रह करके हमारे दुख को हरण करो, दर्शन दो। तुम्हारे बिना जीवन का एक एक पल भार हो रहा है, अब हमारे जीवन कैसे हो।
रहस्य सब पाठ कर रहे थे कल तक, आज इसी काफी प्रश्न चलेगा, किंतु आगामी कल समस्त भारतवर्ष में गुरु पूजा मनाई जाएगी, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा बतलाएगी। मैं समझता हूं इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही चैतन्य बाप महापुरुष जी ने कहा था शिवाज पंडित जी को, दस पूजा कहां आरंभ हो,
दस पूजा हवेली बामनाथ घर,
उसी में बदला रहा है, उसी को मनना। चैतन्य महापुरुष जी ने कहा कि कल व्यास पूजा है, इसी आषाढ़ महीने में आज चतुर्दशी है और कल होगी पूर्णिमा, माता जी से कल भी व्यास पूजा होगी, आषाढ़ ही पूर्णिमा लग रही है। इसलिए ये पूजा कहाँ होगी, उन्होंने कहा कि ये मैं गरीब के घर नहीं, ब्राह्मण के गरीब नहीं, गरीब घर के ब्राह्मण नहीं, नहीं पर होगी। अरे तुम्हारे ऊपर तो बहुत भीड़ हार हो जाएगा, भार की कोई विशेष ये नहीं, उसमें तो कुछ भार लगने वाली चीज ही नहीं है, उसमें लोगों को तो खिलाना पिलाना है नहीं, जो उत्सव इत्यादि होगा हमारे पास में जगह की, जो गुरु पूजा की जो सामग्री है वो हमारे घर में है, एक उनको भी चाहिए ना, हम लोग भी उम्मीद एक रखते हैं, उनको भी ये चाहिए, और पान चाहिए, हुआ मैंने सुपारी चाहिए, चावल चाहिए कच्चा, रोली चाहिए, ये सब कुछ खर्च चाहिए,
चंदन
सब, हाँ फूल तुलसी चंदन
भोग लगाए
सब बस, इसलिए व्यास जी की पूजा होगी। व्यास पूजा किस लिए होगी, उद्देश्य क्या, गुरु पूजा, व्यास पूजा का ही नामांतर गुरु पूजा, गुरु पूजा। विशेष करके भारतीय संस्कृति के गुरु व्यास जी, ऐसी कोई विद्या नहीं है चारों वेदों से लेकर उसके अतिरिक्त अलंकार साहित्य स्थान में जो वेद है, शरण वेद किसको कहते हैं,
शिक्षा कमल व्याकरण ज्योतिष नहीं
रखते हैं, शरण वेदों के सब जितनी भी शिक्षाएं भारतवर्ष में प्रचलित अभी तक हैं या प्राचीन भारतवर्ष में प्रचलित थी, सबके ये आचार्य व्यास वेद अभ्यास, उन्होंने वेदों का विभाग किया, उन्होंने ही उपनिषदों को, बहुत से उपनिषदों को प्रकाशित किया, उन्होंने पुराणों को प्रकाशित किया, पुराण भी उन्होंने लिखे ऐसा नहीं, उनके पहले ही
शतकोटि प्रवेश
वो सब था, जैसे वेद हैं नित्य, पुराण भी वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उनका नाम
पुराना
दोनों पुराने भी हैं और उसके पूर्ण भी अर्थ को करने वाले हैं, उसके बिना वेद पूर्ण नहीं है, इसलिए इन सबको प्रकाशित किया। जिन लोगों का अधिकार नहीं है वेदों में, उनका इत्यादि का उच्चारण नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए महाभारत और पुराणों की रचना उन्होंने, जो वही सब विषय है। विषय तो वही है किंतु इसमें सबका अधिकार है, ऐसा नहीं। वेदों में जिनके अर्थ बहुत गंभीर हैं, समझना बड़ा भारी कठिन, उसको पुराण में उपाख्याय के रूप में, कहानी के रूप में सब सहज कर करके। और इसके बाद अंत में उससे भी संतुष्ट नहीं होकर के अंत में श्रीमद् भागवत उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए भारतवर्ष में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है जो उनको गुरु नहीं मानता, सभी लोगों को, विशेष करके अभी प्राचीन भारतवर्ष में शंकराचार्य जी के बाद में वो लोगों की प्रधानता रही। भारतवर्ष के चारों तरफ में उन्होंने प्रचार किया था थोड़े दिन में शंकराचार्य, इसे धर्म करने से लोग समझते हैं कि तो वही अद्वैत है, और धाम करने से उनके भी स्थापित किए हुए धामों को सभी लोग मानते हैं कि वही चार धाम है उनके चारों शिष्यों के द्वारा। यद्यपि उन्होंने द्वारकापुरी में, पुरी में, बद्रीनारायण वहां पर और एक सिंगेरी, ये चार जगह उन्होंने स्थापित किए, ये सब हमारे प्राचीन संस्कृति के ही ये सब धाम है, बहुत उनसे बहुत पहले व्यास इत्यादि के समय से ही है, किंतु उन्होंने नए रूप में वहां पर अपना मठ स्थापन करके वहां से प्रचार आरंभ, और थोड़े दिन के बाद में ऐसा किया कि कर्मी टर्मी सभी लोगों को परास्त करके सर्वत्र ही अद्वैत वाद का विचार, विशेष करके अपने को विद्वान मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब शंकर के ही फल, शंकर के ही वेदांत को वेदांत। यदि इसमें रामानुजव विष्णु स्वामी निम्बादित और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि नहीं आते तो एक चेटिया ही उनका एक साम्राज्य करता, क्योंकि उन लोगों ने आकर के उनके मत का खंडन कर दिया, तो वो लोग भी व्यास को मानते हैं, व्यास की पूजा करते हैं, किंतु उनके मानने में थोड़ा सा गड़बड़ है। गुरु को अनुभवगत क्या माने, हमारे गुरु जी मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं है उनको, क्यों नहीं है, थोड़ा सा व्याकरण में उन्होंने भूल कर दिया, ऐसे सिद्धांत में भूल गए, उन्होंने आनंदमय प्रकरण में उन्होंने आनंदमय अभ्यास आप उन्होंने एक लिख दिया, तदा पब्लिक के संबंध में समझ में नहीं आए, उन्होंने लिखा उनको लिखना चाहिए था ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए, किंतु लिख दिया आनंद का अभ्यास होना चाहिए, उन्होंने आनंदमय का अभ्यास होना चाहिए, कैसे लिखे आनंद अभ्यास आप ऐसा लिखना चाहिए, किंतु उन्होंने लिख दिया आनंदमय अभ्यास, आनंदमय वो अभ्यास, आनंदमय की उपासना करो, ये आनंदमय से व्यक्ति हो जाता है, किंतु उनकी दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, सब गुण ही है, उनको व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, शक्तिमान नहीं है, केवल शक्ति ही है, इसलिए शक्ति की उपासना वो जितने हैं ना सब पीठों में शक्ति की उपासना करो। ये शंकराचार्य वाले सभी शिव शक्ति कहो, दुर्गा शक्ति कहो, ये विंध्याचल की शक्ति को सब इसी शक्ति के उपास किसी न किसी रूप में बोलो, शक्तिमान की उपासना नहीं करते, तो अभी
ऐसा करते हुए भी इस दिन में व्यास जी के जन्म के दिन में उनकी उपासना करते और उनका जन्म हम लोग के सौभाग्य से ही मथुरापुरी में ही हुआ था। हमने बताया था व्यास जी यहीं पर व्यास जी का जन्म यही पर हुआ था। सरस्वती नदी एक आती थी वृंदावन से इधर आते हैं तो वहीं द्वारा उधर से सरस्वती नदी आकर के उसको मिलती थी उसी को कृष्ण गंगा घाट करते हैं। अभी भी कृष्ण गंगा घाट वहां पर है वहीं पर चक्रेश्वर महादेव जी की पूजा भी होती है। पासी में मनीष महाराज जी का पूजा है तो वहीं पर उनका जन्म हुआ। वो कैसे जन्म हुआ फिर से चढ़ाते हुए तो कोई घर में नहीं वो पराशर जी
ने
महर्षि पराशर वो किसी काम से मथुरा की तरफ में आए रहते थे वृंदावन में उधर जमुना के उस पार किंतु वो आगे घर में किसी काम से शाम हो गई वर्षा होने वाली थी आकाश में मेघ छा गए। इतने में देखा जाओ मैं कैसे जाऊंगा शाम हो गई तो नाविक भी नाव चलाना बंद करके अब शाम हो गई है इसलिए लौट रहा था लौट करके खड़ा गया था चारपाई का लेटा था। तो इसमें पराशर ऋषि आए उनको सभी जानते हैं बड़े बड़े महात्मा हैं प्रभावशाली तो उन्होंने उससे कहा कि भाई हमको ज्यादा पार कर दो मैं बहुत विलंब से आ गया और नहीं करने से हमारा बहुत हानि हो। उन्होंने कहा कि अब तो मैं सब डंडा फंडा सब लेकर के इधर आ गया। उन्होंने कहा जैसे तैसे उन्होंने कहा बेटी मैं बहुत क्लांत हो गया तुम इसको पार करो। उनकी एक लड़की थी वो अस्परा की लड़की कौन रहता या उसका वो गिर गया था वो फिर उसी को मछली ने खा गया और मछली के खाने से मछली से वो पैदा हुई इसने मछली जैसा वो खा किंतु अपूर्व सुंदरी थी अस्परा मलिया जैसी उसी को उन्होंने पाया जीवन में और तीन दिन को पाला पोषा उसका नाम मत्स्य गंगा अथवा सत्य तो वही उसी को कहा। उस समय में 12-13 वर्ष की लड़की थी उन्होंने कहा इसको पार कर तो वो भी पार करने के लिए उसको चली जब नदी नाव में बैठ करके जब पार करने लगी तो एक दीप सा आया टापू आया और उसी जगह में ऋषि उतरे और लड़की की तरफ इस तरह से देखा कि साथ ही साथ में उसको गर्भराया और साथ ही साथ में 16 वर्ष जैसा बहुत लंबा चौड़ा देश दोस्त श्यामलाल का इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण। कैसे द्वैत पायन
दीप जिसका आयन है
आयन मैंने आश्रय मैंने जहां पर उनका जन्म हुआ आयन द्वैत पायन और व्यास वेदों का भी पाठ किया और भगवान के नाम रूप गुण विद्या का विश्व में प्रचार करके वो धर्म के दाते उन्होंने भैया से पराशर जी ने कहा कि तुमको डरने की और लज्जित होने की कोई बात नहीं तुम कुंवारी की कुंवारी ही रहे और ये लड़का भगवत अवतार है ये भगवान की इच्छा से लिया सकता तुम घर में जाओ कोई चिंता मत करो तुम्हारा विवाह संतुल महाराज के साथ में होगा जो इसमें भारतवर्ष के बड़े भाग्य सम्राट है और तुम्हारे बड़े बड़े वीर लोग सब पैदा होंगे तुम्हारे घर तुम्हारा भीष्म गंगा पुत्र भीष्म के साथ में वो तुमको भी अपनी मैया के रूप में माने पीछे से वो तो लौट करके चली आई और व्यास मां से फिर जिंदा बना 16 वर्ष से जैसे तो थे ही
जैसे भी बताया जब ये मरण पर
हाँ व्यास जी ने बताया उनको भैया जब तुमको जरूरत हो मुझे स्मरण करना मैं साथ ही साथ में आ जाऊंगा। तो जब कभी जरूरत पड़ती थी तो मैया उनको बतलाती थी और उनको जाकर के उनको सलाह देकर के उसकी जैसे वो चाहती थी उसके बीच में सेवा करके उसकी इच्छा को पूरी करके चले जाते इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास यहीं पर प्रकट है। यहां पर वृंदावन में रहे, जब तक तो कोई वृंदावन में नहीं रहेगा श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ कदापि नहीं। इसलिए यहां पर बहुत दिनों तक आराधना करके कृष्ण की लीलामयी धाम में वृंदावन नंदगांव बरसाना गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड 784 करोड़ के वृंदावन भूमि में वो रहे। विशेषकर वृंदावन यहां का जो मिनी वृंदावन है बद्रीनाथ काम वन के पास में केदार बद्री इत्यादि है, तो वहां पर उन्होंने रह करके निर्जन में अभी भी निर्जन स्थली है वहां पर रह करके उन्होंने आराधना की। अब इसके बाद में ब्रज के भावों को और भागवत को यहीं पर उपलब्ध किया और फिर यहीं पर रचना की उसकी और शास्त्रों का प्रणयन तो हुआ या प्रकाश हुआ बद्रीनारायण क्षेत्र में वहां वाला हिमालय वाला और यहां पर इस बद्रीनारायण में श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ और वो भी वृंदावन में चार तरफ घूम करके श्रीमद् भागवत ही उनका सर्व श्रेष्ठ ग्रंथ निगम कल्प स्वरूप गणित फल और जो ग्रंथ है उनके निगम इत्यादि का जो प्रकाश किया वो पेड़ के समान है और उसमें सुंदर फल लगने वाला मीठा फल लगने वाला रसाल फल है। इसलिए सब शास्त्रों को करने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं हुई। इतने बड़े साहित्य को लिखना कम बात नहीं है, उसको हम एक एक ग्रंथ को पढ़ना जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण है कितने हजार हजार, भागवत में तो 18,000 श्लोक मात्र और वो लाखों श्लोक हैं, 1,00,000 से अधिक है स्कंद पुराण में, 1,00,000 कितना 50,000 या कितना है पद्म पुराण में, ऐसा ऐसा विशाल विशाल ग्रंथ और ऐसा ग्रंथ जो हम लोगों की बुद्धि तो बहुत सीमित है, हम लोगों ने 1,000 बार सुना है कि कृष्ण अद्वै ज्ञान पर तत्व है, किंतु इसको कहने दीजिए इसकी परिभाषा से बदलाव तो हमको जैसे अद्वै ज्ञान पर ब्रह्म माने क्या होता है, तो भाई इने गिने लोग बतला जो रोज मैं बतलाता हूं तभी इने गिने लोग इसको इसका अर्थ समझे अद्वै ज्ञान पर वदन्ति तत्व विदस्तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द थे। इस बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी टीकाओं में इसका विस्तृत दे ब्रह्मवादियों ने इसी श्लोक के द्वारा ब्रह्मवाद की स्थापना की निर्विशेष इत्यादि, इसी के द्वारा हमारे सगुण ब्रह्मवादियों ने जैसे कि मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, रामानुज हैं, हमारे जीव गोस्वामी जी हैं, इसी के श्लोक पर कृष्ण रसमय तत्व है और ब्रह्म और परमात्मा इनके अंश हैं, ये सब उसमें स्थापित किया है ये श्लोक, किंतु ये श्लोक सहज नहीं है, बड़ा भारी कठिन है भी, तो इसका अर्थ हम रोज रोज सुनने पर भी हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोगों की तो बात क्या, गणेश अपने को विद्या का अधिष्ठात्र देवता समझते हैं और कहते हैं कि मेरा मस्तिष्क इतना बड़ा है और विश्व के जितने विद्वान लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई व्यास जी ने कहा कि हमारा लेखक बनोगे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं होगा, उन्होंने कहा कि जब लेखक नहीं होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, व्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अच्छा मैं लेखक की व्यवस्था करता हूं, गणेश जी को बुलाया कहा भाई ये राइटर बन जाओ लेखक बन जाओ, जैसे इतने बड़े अपमान की बात, जैसे वकील का होता है ना मुहर्री, वकील कहेगा और वो लिखेगा, या जज साहब बैठे हैं और उनके पेशकार को कहेंगे कि भाई तुम शॉर्ट हैंड से इसको लिख लो और फिर टाइप करके हमारे पास ले आना, मैं कर सकता हूं, तो ये लिखिया कहलाता है, तो मैं व्यासदेव का लिखिया बनूंगा, वो व्यासदेव की महिमा नहीं जानते थे, अपने कहने से, जैसे मेरे कहने से तुम बोले अच्छा, किंतु एक शर्त है, यदि ये बीच में कहीं उठ गए और हमको मसाला लिखने का नहीं उन्होंने दिया, उनका बोली बंद हो जाएगी और कुछ सोचेंगे तब मैं नहीं लिखूंगा,
कलम रुक जाएगी,
इसलिए कलम रुक जाएगी तो बस वहीं रुक जाएगी और नहीं चलेगी, इसलिए इनको शर्त में बोलना पड़ेगा। तो व्यास जी ने कहा कि तुम्हारी शर्त मंजूर है, किंतु मेरी भी एक शर्त है, तुम बिना सोचे समझे हमारी बात को कलम से लिखेगा तो तुम्हारा सिर रुक जाएगा। तो बड़ी गर्म, अच्छा ठीक है। इसलिए बीच बीच में व्यासदेव ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते थे जिसे उनको समझ में ही आना बहुत मुश्किल है, इतने में वो कितना हजार श्लोक बना करके रख दे। इस तरह से उनकी ये सब चीजों की लिखावट, जब गणेश के लिए समझना कठिन है एक एक श्लोक, तो हम लोगों के लिए क्या करें, इसी को व्यास सूत्र कहते हैं,
ये श्लोक भी व्यास सूत्र है,
तो इसलिए कहते हैं बड़ा कठिन है उनका। और विष्णु भी श्रीमद भागवत रस युक्त तो है, किंतु सबसे कठिन यदि कोई ग्रंथ है, सबसे उन्नत अधिकार का कोई चीज है तो श्रीमद भागवत, इससे बढ़कर के उच्च दार्शनिक और सबसे श्रेष्ठ रसपूर्ण सरल सहज और अब दुर्वेद्य दुर्बोध ग्रंथ यदि है तो दोनों ऐसे ग्रंथ को उन्होंने, इसलिए ये वैष्णव समाज के भी, इसलिए नित्यानंद प्रभु जी को कहा जैसे व्यास पूजा की व्यवस्था करो, यदि व्यास पूजा नहीं होगी, भारतवर्ष के दार्शनिक विचारों के और धर्म के विचारों के रीढ़ हैं व्यास को भारतीय सभ्यता में से निकाल दो, संस्कृति में से, तो क्या रह जाएगा जीव, इसे व्यास की पूजा करें। जब तक व्यास की पूजा रहेगी भारत धर्म भूमि बना रहेगा, और जिस दिन भारतवर्ष से व्यास की पूजा हट जाएगी उस दिन भारतवर्ष अधार्मिक शून्य बन जाएगा, पश्चात देशों की, किंतु ऐसा होना असंभव है क्योंकि अनपेड हम लोग हैं, हम लोग यहां के जो साधु संन्यासी हैं अनपेड है, इसे नित्य काल तक परंपरा की धारा से, गुरु परंपरा की धारा से वो जरूर चलता रहेगा। विश्व में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है जो भारतवर्ष जैसी, जैसी हम लोगों की ये परंपरा, हम बैठे ही यहां, हमारी परंपरा कहां है, एकदम कृष्ण तप अच्युत गोत्र से आरंभ करके ब्रह्मा उसमें आ गए, नारद जी आ गए, व्यास आ गए, क्रम से एकदम नीचे आ गए, इसलिए संप्रदाय विहीन आदि ममता इस संप्रदाय की धारा में नहीं आकर के जो मंत्र लेकर के नहीं भगवान की पूजा करता है आराधना करता है उसका धर्म बेकार का है, उसे कुछ भी लाभ नहीं होने को, और यदि भूल भटक करके भी किसी प्रकार से इस धारा में आ गया और उसी मंत्र लेकर के करेगा तो उसका मंत्र फल है, सीधी सीधा भजन का मेरुदंड है गुरु पूजा, गुरु में विश्वास, गुरु के को प्रसन्न करना, जिस गुरु भक्ति को हमारे इस धर्म से निकाल दिया जाए तो मेरुदंड विहीन, इसलिए भारतवर्ष में आजकल जितने भी नए नए संप्रदाय हो रहे हैं मेरुदंड विहीन, गुरु से कोई संबंध नहीं, गुरु कहते हैं गुरु कौन, परमात्मा का नाम ही गुरु है, कहते हैं ना
अखंड तत्व गुरु,
और एक कहते हैं कोई अखंड तत्व गुरु, और कोई कहता है कि जितने आदमी हैं सभी गुरु हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है क्योंकि सभी ब्रह्म हैं इसलिए सभी गुरु हो गए,